सामने कहते हैं, हे प्रिय भाइयों, हे प्यारे भाइयों, इस संसार माया मृग परिचय का भय, इस मृत्यु रूप संसार में न जा करके एकमात्र हाथ उठा करके हरि बोल बोलते हैं। इस प्रकार जो महाप्रभु करुणा है, ऐसे बंदे महापुरुष थे चरणार बिंद, सन्यासी बन करके वे आचंडाल समस्त आप हमारे जीवों को सबको प्रेम दिया। ऐसे जो गौरांग से हरि हैं, विश्व जगत को नाम प्रेम माला गाथी पराई लो जग जने, हरि नाम का संदेश दिया कि जीव केवल हरि नाम कीर्तन करे, हरि नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावासी निर्वार्पणम, चित्त रूपी दर्पण जिसमें धूल मिट्टी मैल जमा हुआ है, हम अपने को देख नहीं पा रहे हैं और भगवान को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, जान भी नहीं पा रहे हैं। पहले हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार मलिनता धूल आवर्जना कंकर के समान जो हृदय में भरा भरा हुआ है, यह गंदगी हट जाती है हरि नाम कीर्तन करने से। भव महादावानि निर्वार्पणम्, संसार में जो आग लगी हुई है, मन की अशांति, भौतिक पीड़ा अशांति, प्राणियों के द्वारा अशांति, देवताओं से पीड़ा, संत से कलह विवाद अशांति पीड़ा, ये संसार की आग बुझ जाती है जब कोई व्यक्ति हरिनाम ग्रहण करता है। हरिनाम कीर्तन करने से समस्त प्रकार का शुभ उदय होता है, सारी बाधाएं जैसे मिटती हैं, वैसे सब प्रकार का शुभ कल्याण उदय होता है। हृदय में भक्ति के द्वारा हृदय सरस पावन बन जाता है, विद्यावधु जीवन स्वरूप हृदय में भाव भक्ति उदय होता है। और इसके साथ आनंदामुंदी वर्धनम, हरि नाम करने से श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं सदा सर्वदा आनंद में डूबे रहते हैं, उनके जीवन में कभी निरानंद दुख शोक मोह ग्लानि कदापि संभव नहीं, कभी आते ही नहीं, ये सब कुछ मिट जाता है, सदा ही आनंद में डूबे रहते हैं, प्रति पल पल में पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। ऐसे समय भक्त भगवान का मधुर मिलन होता है, मधुर संपर्क बनता है। यही भक्त भगवान का जहाँ मधुर मिलन हो, उस मधुर मिलन क्षेत्र है प्रेम माय वृंदावन, जिस वृंदावन में भगवान ने प्रेम माय लीलाएं की है। ऐसे अवतार अवतार गौरांग श्री हरि इस नाम को उस जगत के लिए दिया, यही संदेश के रूप में कृष्ण प्रेम में विवाहित हो जाए, हृदय भक्ति के द्वारा विवाहित हो, कृष्ण के चरणों में अनुराग हो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण करते हुए जगन्नाथपुरी को गए और वहां से फिर दक्षिण की यात्रा की, जहां जाकर के उन्होंने इतनी करुणा विस्तार की जो कि कल भी वर्णन किया गया था कि यहां कहीं गए लाखों व्यक्ति भीड़ जम गए, सभी लोग हरि कीर्तन करने लगे, सभी को प्रेम मिलाया, कृष्ण भक्ति रस में सराबोर किया, जिन्होंने उनका नाम दूर से सुन लिया, नाम सुनते ही कृष्ण भक्ति में गदगद हो गए, ऐसी करुणा का विस्तार किए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी श्री राय रामानंद से जाकर के मिले और स्वयं ही प्रश्न करते हुए उनसे उत्तर मांगा, जो कि सात साधन तत्व पर विवेचन किया गया। जगत के लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में क्या प्रयोजन, क्या करना चाहिए। साधारण रूप से सभी लोग सोचते हैं कि घर संसार करना, खाना पीना भोग विलास, यही हमारे जीवन का सब कुछ है। वही भगवान की पूजा अर्चना करनी है, भगवान प्रसन्न हो, हमें धन दे, जप दे, पुत्र दे, परिवार दे, परंतु इसके द्वारा जीव कदापि सुखी नहीं होते, ना ही इसके द्वारा जीवों का का कोई आत्यंतिक कल्याण होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि वो वाइब्रेशन ये सभी बाहरी बातें हैं। जहाँ भक्ति और भक्त भगवान का कोई संबंध नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, केवल अपना स्वरूप अपनी चादर, इसको भक्ति नहीं कहते। लोग जाते हैं देवी देवताओं के मंदिर में, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, परंतु क्या चाहते हैं? जगत के वस्तु, इसके द्वारा जीव कभी सुखी नहीं होते। बहुत से लोग अपने जीवन के कर्मों को अर्पण करते हैं कि पत्र पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा पत्र पुष्प फल जल जो कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक देता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ, परंतु भगवान किसके दिए हुए वस्तु को ग्रहण करेंगे? वे कहते हैं प्रजात परम, जिन्होंने गुरु दीक्षा ग्रहण की है, शत्रु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हुए सदाचार पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, ऐसे निष्ठाचारी निष्ठावान व्यक्ति के द्वारा दिए हुए वस्तु को वे ग्रहण करते हैं। अन्यथा किसी व्यक्ति के पास यदि हिमालय समान धन दौलत भोग वैभव रहे, फिर भी भगवान कभी झांक के देखते नहीं कि उनके प्रति कोई भी भगवान का नजर नहीं। कोई भक्त हो करके यदि पत्र पुष्प फल जल एक पत्ता एक फूल थोड़ा सा पानी भी भगवान को समर्पण करता है तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं, और भक्तों के द्रव्य को प्रभु कभी उलट फेंक करके देखते नहीं। इसलिए कर्मी चाहते हैं स्वर्ग का सुख, और ज्ञानी चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए। संसार में जितने भी साधु देखेंगे प्राय करके सब ज्ञान मार्गी और मुक्ति को चाहने वाले होते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा धर्म अर्थ का मोक्ष, अज्ञान तमे नाम कहिए कई तो धर्म अर्थ काम वंच आदि यही सब। संसार धर्म, वर्णाश्रम धर्म और विषय सुख भोग, धन की चाह, ये सब कपटता है। इसके द्वारा जीवों को वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। इससे आगे मुक्ति की अभिलाषा सबसे बड़ी कपटता है। भागवत जी ने दिखाया यह अज्ञान कृत, इसके द्वारा जीवों को कदापि शांति नहीं मिलती। इसलिए मुक्ति की अभिलाषा और स्वर्ग सुख की अभिलाषा, भोग सुख की अभिलाषा को जिन्होंने त्याग दिया, एकमात्र भक्ति पथ के पथिक बने हैं, वही शुद्ध भक्त कहलाता है जिसमें अपने सुख की चाह नहीं, सर्वस्व दे करके भगवान की सेवा। कोई प्रेमी व्यक्ति भगवान से प्रति करता है, भक्ति करता है, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु हमें कुछ दे दे। भक्ति में देना नहीं होता है, भक्ति में देना होता है। अपना सर्वस्व हम प्रभु के चरणों में समर्पण करें। विश्व संसार के जितने भी देखेंगे सब स्वार्थी होते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जो है निष्काम निस्वार्थ प्रेमी। इसलिए श्रीमद् भागवत ने उनका उदाहरण दिया, भगवान कृष्ण से बढ़कर के न तो कोई दयालु है और ना ही कोई निस्वार्थ प्रेमी है। भगवान निस्वार्थ प्रेमी है, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं, हमसे कोई चाह नहीं, वे तो परिपूर्ण काम है। फिर भी कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक उनको कुछ भी समर्पण करता है, भगवान उसे ग्रहण करते हुए उन्हें अपना लेते हैं। यही भक्त भगवान का संबंध होता है। इसलिए ज्ञाने प्रयास अनुपासनमंत एव जीवन्ते सन्मुख नेता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवान मनो भी जे प्रायशो जितो अप्यसि तैस। स्त्री लोग क्या, वैसे जो प्रिय भक्त शुद्ध भक्त होते हैं ऐसे भक्त अधिक भगवान को जय कर लेते हैं। आज तक बड़े बड़े वीर पुरुष आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और रावण कुंभकर्ण कंस जरासंध, बड़े बड़े वीर पुरुष आए, काल जवन भी 3 करोड़ जवन सेना लेकर के पकड़ना चाहा, यही पकड़ते हैं हाथ से बाहर पकड़ नहीं, कोई भी वीर आज तक उन्हें पकड़ नहीं पाए, कोई भी ज्ञानी पुरुष आज तक भगवान का दर्शन पाए हैं और उनको प्राप्त किए हैं, बांध लिए हैं, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। कोई भी कर्मी भगवान को पाए हैं ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसे जो अजीत भगवान, ऐसे भगवान को कौन बांध सके हैं? एकमात्र ज्ञान का प्रयास, मुक्ति की अभिलाषा को छोड़ करके शुद्ध भक्ति के पथ, शुद्ध भक्ति पथ के जो पथिक बने हैं, अपने हृदय की सर्वस्व भावना सर्व समर्पण करके जो कहीं प्रभु की भक्ति करते हैं, भगवान की कथाओं का आश्रय लेते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसे भक्त भगवान को बांध लेते हैं, जीत लेते हैं। भक्तों के द्वारा भगवान जीते गए, इसलिए भक्त कहते हम जीत गए कि अजीत भगवान को हमने जीत लिया। इसलिए कहते हैं कि ऐसे भगवान को कैसे बांधें, कैसे भक्ति करना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौलम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। करोड़ों जन्मों स्वीकृति करके जो संभव नहीं होता है, ऐसे संत पुरुषों का दर्शन हो जाए, उनकी कृपा मिल जाए तब संभव है, ऐसे कृष्ण भक्ति रस में सराबोर हो सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। भरत महाराज ने श्रीमद् भागवत में श्री रघुगण राजा को कहा कि हे महाराज रघुगण, संसार में लोग क्या करते हैं? रघुगणी पर तपसा न जाती, कोई तपस्या में बैठे हुए हैं हिमालय के तंद्रा में और पहाड़ पर्वतों में कहीं जंगल में जाकर के बैठे हुए हैं तपस्या कर रहे हैं, कोई घर छोड़ करके भाग रहे हैं तो कोई घर में बैठे हुए हैं, कोई वेद का पाठ कर रहे हैं तो कोई पूजा पाठ में लगे हुए हैं, कोई देवी देवता का पूजन कर रहे हैं तो कोई जल को तर्पण कर रहे हैं, कोई सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और कोई अग्नि की पूजा कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा करके। क्या इस सबके द्वारा शांति मिलेगी? कदापि नहीं, इन सब से कदापि शांति नहीं मिल सकती, जीवों का कल्याण नहीं हो सकता है बिना महापाद रजोगी से। जब तक महान पुरुष के चरणों में अपने जीवन को नोछावर नहीं करते, अपने को अभिषेक नहीं करते, उनके वचनों पर चला नहीं करते, तब तक जीवन का वास्तविक कल्याण नहीं। इसलिए आज हम लोगों का परम सौभाग्य, अहो अति भाग्य है, संत महान पुरुषों का दर्शन और उनका सान्निध्य, उनके चरण सान्निध्य में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह प्रभु की अपार करुणा है। इसलिए उनके चरणाश्रय करने में, उनके मुखारविंद से अमृतमय वाणी को सुनकर हम सब का जीवन धन्य हो, इन्हीं प्रार्थना के साथ में मैं आज अपना वक्त को यहीं पर रखता हूँ।
कृष्णा कीर्तन करो। मृदंग एक तो धीरे धीरे बजा मधुर स्वर।
जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल।
इसलिए 500 साल पहले 520 साल पहले ये कृष्ण जो विनय नंदन स्वयं भगवान फिर आया चैतन्य महाप्रभु रूप में, लेकिन वो कभी नहीं बताया मैं भगवान हूँ। सब समय ये चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। किस लिए आज कलयुग हमारे बहुत प्रकार का मान बेकार साधु है जो सब शिष्य को थक खाते हैं। इसे पार्वती पूछा महादेव से, और ये सदगुरु कैसे मिलेंगे कलयुग में? वो महादेव थोड़ा हंसने लगे और बोला, गुरु बहु शांति शिष्य संता का हर का सदगुरु दुर्गा देवी शिष्य स्मिता का। बोलो बहुत प्रकार का साधु है कलयुग में, लेकिन ये सब थकने वाला है। सब शिष्य का पैसा, सब शिष्य का मकान, सब किस शिष्य का टाइम और सेवा सब लेते हैं अपने भोग के लिए। ये सब असदगुरु, किंतु सदगुरु भी दुर्लभ है। वो भी चोरी, वो भी एक बड़ा चोर है। क्या चोरी करेंगे? हमारा पाप, हमारा दुख, हमारा क्लेश, हमारा अविद्या, ये सदगुरु ये चीज लेते हैं। इसलिए सदगुरु कौन है? ऐसा बहुत लंबा दाढ़ी वाला, पेट निकालने वाला सदगुरु इधर उधर घूम रहे हैं, स्टेशन पर जाते हैं, बोर है जो मिल पीते हैं, चाय लेते हैं, बान चरस पता नहीं क्या लेते हैं और पहुंचे दिए, और ये हमारे गुरु सदगुरु। लेकिन सर व्यास्तविक गुरु कौन है और ये सदगुरु का आचरण कैसा होना चाहिए हम लोग तो नहीं जानते। जैसा बारिश का समय ये सब घास हो वीड्स क्या है गेहूं गेहूं अपने आप निकालते हैं, कोई नहीं कोई नहीं मन निमंत्रण देते, लेकिन अपने आप आते हैं। ऐसे खाली को बहुत आवाज आ रहा है, बहुत ऐसा इंटरनेट में देखो तो कितने पर कितने खाओ की आवाज अभी आ चुके हैं। कम से कम 12 लोग बोलते हैं मैं खाली के आवाज था, मैं खाओ की हूँ। अगर 500 खाओ की है तो लड़ाई हो जाएंगे। लेकिन सब लोग ये नहीं जानते वास्तविक साधु कौन है, सब छापने वाले हैं। लेकिन सचमुच गुरु कौन है और सर्व का आचरण कैसे है? ये कलयुग केवल नाम द्वारा हम जो सुन चुके हैं कि कलयुग में एक उपाय है ये मणि कृष्ण का नाम, तो कैसे लेंगे, किस भाव से लेना ये कृष्ण का नाम हम लोग नहीं जानते। ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आया। भगवान ही है और प्रमाण भी है, किंतु बोलने को बोला मैं भगवान, बोला मैं कृष्ण का दास हूँ, आपने आचार्य कोई सिखाई नहीं सभा। और चैतन्य महाप्रभु आपने आचार्य द्वारा सबको शिक्षित किया साधु कैसा होना चाहिए। जैसे गृहजन शिक्षा के न्यासी को नायक का, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे वो माने एक्सलेंट एग्जाम्पल थे, तो गृहस्थ हो लेकिन कैसा होना चाहिए। और बहुत सब समय ये ब्रह्मचारी ये सन्यासी को सेवा में लगा, और चैतन्य महाप्रभु गिरदिला है बहुत गरीबी थे, गरीबी नहीं भगवान है लेकिन ऐसे भी ने दिखाया। और रोज ये निमाए ये चैतन्य महाप्रभु रोज 10-20 को सन्यासी निमंत्रण खाने के लिए और सबको प्रसाद खिलाते। और सची माता सोचे इतना सन्यासी आते और पैसे नहीं मेरे पास, ये सब व्यवस्था कैसे करूँगा। और निमा आए ये गाँव के पीछे आए और बस और दिया दो छोला सोना दिया माँ को, मैंने 20 ग्राम सोना दो को माँ को दिया। और माँ मैंने डरने के कारण नहीं पूछा कहाँ से आया, लेकिन दिन रात सब वैष्णव सब रूप से किया गृहस्थ तो होने को भी। और लेकिन जब संन्यास लिया कितना उच्च कोटि का उदाहरण दिया अपने जीवन में, और कोई स्त्री का नाम जीवन में नहीं सुनते हैं, और सब स्त्री लोग बहुत दूर रह के प्रणाम कर सकते, लेकिन थोड़े दूर से बहुत कठोर है चैतन्य महाप्रभु। जैसे एक सर्व का स्वभाव है कमल से कोमल है और वज्र से कठोर है, यह सर्व का स्वभाव। और कैसे चैतन्य महाप्रभु सब अशक्त सब बहुत विषय से बहुत दूर रहना और दिन रात यह हरि नाम लेते, दिन रात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल दिया ये कृष्ण नाम क्या है, एक चिंतामणि है। चिंतामणि समझ गया कल्प वृक्ष, जो मन में कल्प वृक्ष के सामने तरंग देते हैं। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ है कल्प वृक्ष के सामने होने पर भी हम विषय सुख मान रहे। तो कृष्ण ने खुद बात बोला है, बोले प्रभु कहे अमर भजन बजाए किसाइसु अमृत शरीर विसारी की बे ए परम गुरु कृष्ण बोल कृष्ण बोलते हैं जो मेरे भजन खाते हैं और हमसे कुछ विसाई सुख मांग रहे हैं जो सबसे बड़ा मूर्ख है किसे अमृत फेंक रही है और विष मांग रहे ये कुछ बात है लेकिन प्रभु कृष्ण से आमी विद्या ए मूर्ख विसाई के नीवो स्वाय चरण दीवे विसाई हो दीवो लेकिन कृष्ण बोले मैं मूर्ख नहीं हूँ लेकिन वो मूर्ख है लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ ये मूर्ख विसाई क्यों दूँ मैं क्यों दूंगा मैं चरण अमृत और जो गई हर पी करके ये सब विषय को भूल जाएंगे चैतन्य मन को ये जीवन सब ये भोग शक्ति सबसे बहुत दूर रहते हैं अचानक एकदम 100% सारू जैसा जीवन बिखिया और दिन रात प्रभु का नाम किया और दिन रात कैसे नाम हम नाम लेते हैं हरे कृष्ण लेकिन मन उड़ा उड़ा भाग रही है कभी ये चित्र कभी ये चित्र कभी ये चित्र हरे कृष्ण क्या भाई ठीक है हाँ हमको बहुत उपदेश भी दिया नारायण ना सुंदर कविता जगदीश कमय मामा जन्म निधन बताया चेतन यह शिक्षा दिया जब हम नाम लेते तो क्या नाम ले कृष्ण से ना जन्म ना जन्म ना सुंदरिम हम कैसे नहीं चाहते मैंने घर परिवार नहीं परिवार जन नहीं चाहता हूँ ये सुंदर स्त्री नहीं चाहता हूँ हम भी मुक्ति नहीं चाहते जब कोई सोचे ये क्या बात है मुक्ति सबसे बड़ी चीज है लेकिन सेवा से लोग नहीं जानते मुक्ति क्या है मुक्ति क्या है भगवत सेवा ही मुक्ति है ऐसा संगत छाए मिले का मुक्ति आपकी बिना नाम विग्रह हम भगवान भजन नाम मुक्ति मुक्ति के बाद क्या करेंगे हम एक स्वरूप पाएंगे और इस दिव्य स्वरूप सीधे शरीर के साथ दिन रात कृष्ण की सेवा करेंगे इसे चंद्र को यह शिक्षा दिए कुछ ने कुछ मत मांगो कृष्ण से तो अगर कुछ मांगना चाहते तो क्या मांगेंगे हम आपका सेवा चाहते जैसा भारत जी जब रामचंद्र के पास आया और रामचंद्र भरत महाराज को भरत जी को आशीर्वाद देने के लिए चेष्ट किया कुछ मांगो हमसे वो भरत जी क्या क्या बोले ना आत ना काम ना काम च हो ना हो चाहे निर्वाण जन्म में जन्म मेरा राम पाल नहीं कहो हम तो जन्म आत काम ये निर्वाण मुक्ति अद्वैत मुक्ति हम नहीं चाहते हूँ क्या चाहते हूँ जन्म जन्म रामचंद्र उसके चरण में राति होना चाहिए ये सब सब चीजें मार्ग की शिक्षा अन्यथा हम कुछ वासना है कुछ स्वाद है नाम लेने के समय है ये नाम हमको झटका देंगे हमको वंचित कर देंगे और यह हमारा बौद्ध खींचा पूरा करेंगे और हम कृष्ण से ऐसे विरक्त हो जाएंगे ये सब चीजें मार्ग की शिक्षा और 24 ज्ञान मैंने 24 साल नवद्वीप में रहा गृहस्थ और सब बाल लीला ने किया इसके बाद जगन्नाथपुरी गया और 24 साल ये सन्यासी के लिए प्रकाश किया और जैसा हम सुन रहे हैं रामानंद रॉय संवाद कैसे महाभूत पूरा भारत में घुमाया मैंने दक्षिण भारत गया ये बॉम्बे के साइड पर गया और ये वाराणसी उस वृंदावन सब जगह गया और सबको कृष्ण नाम मैंने ज्ञान दिया तो जैसे ने महाप्रभु एक साउंड का किया पृथ्वी आशियादि नगर निगम सर्वत्र हुए लोग प्रचार मोरा नाम जितने महावीर ने संकल्प किया एक दिन हमारा नाम जो है मानी हरे कृष्ण महामंत्र तो एक दिन पूर्व देश सब जगह सब गांव में प्रचलित हो जाएंगे को लोग सोचते हैं ये क्या इंडिया में हो नहीं तो जय गौ चैतन्य महाप्रभु की कृपा अभी अमेरिका में लंदन में जापान में चीन में दक्षिण अमेरिका में कोई देश नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं है और सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लेकिन एक बात है जैसे भगवान जो भक्त में भगवान के भक्त हूँ ये व्यास करे कृष्ण का भक्त नहीं है कृष्ण बालाचाम ने बताया जो भक्त में ये यदा मद्भक्तं मैं कृष्ण का भक्त हूँ मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो बोलते मैं कृष्ण का भक्त के बाद में हूँ ये मेरा व्यास का भक्त है। जैसा जैसा हम चैतन्य महाप्रभु के पास पाने के लिए आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पास कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसलिए गुरु जी के पास आसानी बोला है। और हमारे बाबा आनंद सरस्वती ठाकुर ने निर्वाचित किया, विचार्य दारमाम परिचार्य विष्णु विचार्य तीर्थम परिचार्य वैराम बिना गोर प्रिय पदा सेवनम वैराग्य दुष्प्राप्ति प्रदान की प्रदान। आप विष्णु को पूजा करो लेकिन उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। आप सब वेद पाठ करो, सब तीर्थ में भ्रमण करो और सब वानाश्रम दान इत्यादि धर्म करो, किंतु चैतन्य महाप्रभु के पाचार्य की कृपा बिना ये प्रेम जो वेद के लिए भी दुर्लभ है आप पा नहीं सकते। इसलिए हम गुरु जी के पास किसलिए, और महाप्रभु गुरु जी का पूरे संचारित किया। ये गुरु जी कौन है जो हमारा गुरु प्रणाम प्रणाम में स्थित है, जैसा आदि गुरु कृष्ण भले कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण के शिष्य कौन है ब्रह्म जी, ब्रह्म जी के शिष्य कौन है व्यास देव जी, नारद नारद के शिष्य व्यास जी, व्यास जी के शिष्य सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव को परीक्षित महाराज का परीक्षित महाराज को सूर्य गोस्वामी, ऐसा ये गुरु परंपरा में आया। और चैतन्य महाप्रभु भगवान होने पर भी उस गुरु परंपरा में आया, और हमारे गुरु जी और विष्णु गुरु जी ये गुरु परंपरा के माध्यम से हम कुछ सूर्य ज्ञान और सूर्य भक्ति को पा सकते हैं, कुछ निर्मल उपदेश सुन सकते हैं, इसलिए गुरु परंपरा में स्थित। ठीक है, यहाँ पर मेरा दिल खाली हो गया। हमने आज किया ये गुरु जी की कृपा जो गर्व किया मान कीजिए, वंशा का शुक्रिया।
ज्ञान तिमिरान धर्ष्य ज्ञानं जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणं। सब समय पहले अपने परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री चरण कमल में कोटि कोटि बार दंडत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण सज्जनों और माताएं हम लोग विश्व में सर्वत्र सनातन वैदिक धर्म भक्ति धर्म का प्रचार करते हुए जम्मू में आए हैं। यहाँ पर 3-4 दिनों से हरि कथा हो रही है। हम लोगों को ये समझना चाहिए, कोई माने और न माने, हम सभी कृष्णदास हैं। कृष्ण को भूलने के वजह से हम इस आवागमन में अनादि काल से जब से सृष्टि हुई है तभी से घूम रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, किंतु आज तक सुख शांति नहीं मिली। भगवान ने अनुग्रह करके मनुष्य शरीर दिया, केवल मनुष्य शरीर में ही साधु संग होगा, हरि कथा हम सुन सकते हैं, और भक्ति लाभ करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे जन्म में नहीं। यह भी जन्म का कोई ठीक नहीं, मनुष्य जन्म कितने दिन रहेंगे। परीक्षित का महाराज जी का 7 दिन का समय था, हम लोगों का 7 दिन का क्या, 7 मिनट का भी कोई समय नहीं है। दूसरी बात ये समझो, संसार में चाहे आप जितने भी सुखी हो, सुंदर हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, बुढ़ापा आएगी, जरूर आएगी, और फिर शरीर को छोड़ देना होगा। शरीर से जो कुछ कमाई किया, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, परिवार का कोई सदस्य भी साथ नहीं जाएगा। कहाँ जाना है ये भी ठीक नहीं। इसलिए समय रहते तुर्णम जते तना पते तन मृत्यु जाओ, मृत्यु होने के पहले ही इस शरीर में आत्मा मैं और परमात्मा कृष्ण है। सद्गुरु का चरणाश्रय करके, उनसे हरिनाम दीक्षा लेकर के, जल्दी से जल्दी उनको अनुभूति करके के इस जगत से चले जाओ, अन्यथा फिर सूकर कुकर गधे पशु पक्षी देवता फिर होंगे, ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में भक्ति कहने करने के लिए कहा, भक्ति है क्या चीज समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी से कहा, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माध्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तन से, मन से, वचन से, भावना से, वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में, कृष्ण की तैधारावत अविच्छिन्न गति से जो भक्ति होती है, उनकी सेवा होती है तन मन इत्यादि से, उसको भक्ति कहते हैं। किंतु उसमें दो गौण लक्षण है, अन्न अभिलाषिता सुन, कृष्ण के भक्ति के अतिरिक्त कुछ मत चाहो, अपने लिए कुछ भी मत चाहो, चाहो तो उनके चरणों में प्रेममयी भक्ति, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या के द्वारा वो भक्ति अच्छा दिखना हो। शरीर रहते कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए रह नहीं सकते, किंतु ऐसे करो जे वो कर्म ना रह करके भक्ति हो जाए। जो कुछ करो कृष्ण के लिए करो, खाओ पियो सो जो कुछ भी करो कृष्ण के लिए करो, तो भक्ति अन्नाभिलाषिता शून्य, तन से, मन से, वचन से, भावना से, इनकी चेष्टाओं से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हरि गुरु वैष्णव के अधीन रहकर यदि हम करते हैं तो भक्ति होती है। कि तो उत्तमा जब होगी, कोई भी लौकिक इच्छा न हो और कर्म ज्ञान जोग से ढकी हुई न हो। उदाहरण के साथ में समझो, ध्रुव जी बचपन में पिता की गोद में चढ़ना चाहता था और वहीं पर उसकी विमाता बैठी थी, उसने उसको दूतकार दिया, हमारे पहले मरो, मरने के बाद में हमारे गर्भ से जन्म ग्रहण करेगा, तब अपने पिता की गोदी में बैठेगा। क्षत्रिय बालक बात चुभ गई, रो रोते रोते मैया के पास में गया मैया ने पूछा जे किस लिए रोता है, पिताजी ने गोदी नहीं ली, उस समय सिंहासन पर बैठे थे, तो मरी विमाता ने ऐसे कहा, वो इसी के लिए रोता है, जाओ तुम्हारे प्रभु हैं उनका भजन करो, सारे पृथ्वी भर का तू राजा बन जाएगा, सम्राट हो जाएगा। माता के कहने से वन में चला गया अकेले। भगवान ने नारद जी को भेजा, मथुरा में जमुना के किनारे मिले, उन्होंने कहा जरी बालक तू कहाँ जा रहा है, जंगल में बाघ सिंह खा डालेंगे, पिता की छोटी सी बात के लिए तू इतना हो गया, घर लौट जाओ। घर नहीं लौटूंगा। तब उसको उन्होंने मंत्र दिया, जमुना में स्नान करके इस मंत्र को करो। तो मंत्र किया, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत जल्दी ही भगवान ने उनको दर्शन दिए, दर्शन दिया और बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेगा और फिर हमको प्राप्त होगा। जब भगवान का दर्शन मिला तो उन्होंने कहा जरी हाय हाय, मैं कांच का टुकड़ा खोज रहा था और मिल गया मुझे, चिंतामणि मिल गई, हाय हाय हमने बर्बाद कर दिया जीवन, किंतु 36,000 वर्ष भोगना पड़ा। भगवान की भक्ति की और भगवान का दर्शन भी उन्हें मिला, किंतु भक्ति कैसी है, शुद्ध भक्ति नहीं है, इसलिए अपने लिए राज्य की इच्छा थी, इसलिए ये भक्ति शुद्ध नहीं है, सकाम भक्ति है। इसलिए वैष्णव लोग ऐसी भक्ति को नहीं चाहते। दूसरी बात, प्रहलाद महाराज जी भगवान की भक्ति करते हैं। हिरण्यकश्यपु को जब भगवान ने मारा तो प्रहलाद जी को शांत करने के लिए उनकी गोदी में बैठ गए और नृसिंह देव जी के आंसू आंखों से आ गए। बोले बेटा हमारे आने में देरी हो गई, विलंब हो गया, तुम कुछ वर मांगो। तो उन्होंने उत्तर दिया जी प्रभो मैं बनिया नहीं हूँ, बनियागिरी करूँ, चार पैसे दे करके और उससे मसाला चार पैसे का ले लिया और या दे दिया, मैं बनियागिरी नहीं करना चाहता, मेरे हृदय में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो लौकिक पारमार्थिक आप उसको नष्ट कर दीजिए, तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं है, तुम शुद्ध भक्त है फिर भी मांगो, तो हमारे पिताजी ने आपके चरणों में अपराध किया है उनको सदगति हो, अरे ये भी हो गया है और कुछ मांगो। उन्होंने जगत भर का दुख मैं भोग करूं और हमारी भक्ति से लोग इससे पार हो करके भगवान की भक्ति पा करके भगवान के धाम को जाएं और उनका दुख सब मैं जीवन भर भोगता रहूं। कहे ऐसा तो नहीं किंतु ऐसा होगा, जो लोग हमारी तुम्हारी कथाएं सुनेंगे पढ़ेंगे उनको भगवत भक्ति होगी। इसलिए प्रहलाद महाराज जी भक्त हैं, उनके अंदर में कोई भी अभिलाषा नहीं है, किंतु उनमें एक ऐश्वर्य ज्ञान है। ऐश्वर्य ज्ञान क्या, भगवान हमारे नृसिंह देव या कृष्ण वो जगत के पिता हैं, सृष्टि करने वालों के भी सृष्टि करने वालों के सृष्टि करने वाले हैं। उनकी स्तुति के अतिरिक्त हम स्मरण के अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, उनके भगवान को भूख नहीं लगती, खिला नहीं सकते, वो कभी थकते नहीं जो पैर दबाएंगे, प्यास नहीं लगती जो पानी देंगे, क्या सेवा करेंगे, पिता के भांति उनका स्मरण करेंगे,
इसलिए भक्ति तो है, किंतु जैसा कहा गया है तन से मन से वचन से इनकी सारी चेष्टाओं से भावनाओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो होती है सेवा, इन्होंने क्या किया, पैर दबाया, पानी दिया, न क्या किया, कुछ नहीं, स्मरण करते रहे। इसलिए इनकी भक्ति होने पर भी भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं है, कोई सेवा नहीं है, स्मरण केवल है। इसलिए इनकी अपेक्षा श्रेष्ठ माने गए महाराज अम्बरीश। भागवत में अम्बरीश महाराज जी का चरित्र है, वो महाराज अम्बरीश रहते थे तो मध्य प्रदेश में, किंतु वृंदावन में, मधुबन में, मथुरा में उनका एक आश्रम था, द्वादशी पालन करते थे। एक समय द्वादशी पालन किया और उसी समय में महर्षि दुर्वासा वहाँ पर पहुँचे। नाना की बहुत अच्छी बात है, मैं अभी पारण करने वाला था और आप आ गए, तो पहले आप प्रसाद पाइए, इसके बाद में मैं पारण करूँगा। भक्तों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को दे करके अपने आप पारण करना चाहिए। मैं जी ठीक है, प्रतीक्षा करो, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी यमुना में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यमुना में स्नान करने लगे और चिंतन करते 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 और बहुत विलंब हो गया, अब थोड़ा सा समय रह गया। इस समय राजा चिंतित हुए, मैंने एकादशी किया और समय के बीच में द्वादशी रहते उसके चतुर्थ चरण में ही यदि भक्त कुछ न लिया जाए तो भक्ति नष्ट हो जाती है, क्या करूं? ब्राह्मणों से पूछा, अंत में निर्णय किया, जो जो निर्जला उपवास करता है उसके लिए भगवान का चरणामृत, वो अन्न भी नहीं है, अन्न खाना भी है, इसलिए चरणामृत बस ले लो। बस उन्होंने चरणामृत लेकर के एक बूंद मुख में दिया। इतने में ऋषि वहाँ से आए, हमको निमंत्रण दिया और हमारे आने के पहले तुमने भोजन कर लिया, बस शीर्ष जटा से उतारी, जटा एक और कृत्या राक्षसी के रूप में काज से इसको जला करके भस्म कर दो। अम्बरीश जहाँ के तहाँ खड़े रह गए हाथ जोड़कर, और कृत्या राक्षसी आग के समान निकल करके उनको जलाने के लिए चली, किंतु भगवान का चक्र उसे जला करके और दुर्वासा की तरफ में दौड़ा। दुर्वासा जी भागे, महाराज अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या ज्वलंत आग आई, वो भागे नहीं, और ये भागे 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 तीनों लोकों में गए, शंकर जी के यहाँ गए, उन्होंने भी रक्षा नहीं की, ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने भी रक्षा नहीं, और अंत में नारायण के पास में गए, उन्होंने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो भक्तों के पराधीन हैं, जहाँ कांटा गढ़ता है वहीं से निकलता है, भक्तों के चरण में अपराध किया जाओ। फिर वो आए अम्बरीश महाराज के यहाँ, अम्बरीश महाराज जी हाथ जोड़ करके खड़े थे, तब तक एक वर्ष तक चक्र उनको जलाया नहीं, किंतु पीछा करता रहा, किस लिए? इसलिए कि अम्बरीश बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, ये ऋषि हमारे लिए कष्ट में पड़ा है, आप इसको जलाइए, नहीं नहीं तो कभी जला करके खाक कर देते। अंत में जब आए अम्बरीश के चरणों में वो गिरे, तो उन्होंने उनको उठा लिया और फिर चक्र को उन्होंने कहा, यदि हमने कुछ भक्ति की है भगवान को, आप यदि संतुष्ट हैं तो आप शांत हो जाइए। अंत में चक्र शांत होकर के चले गए। अम्बरीश, ये दुर्वासा जी ने कहा, आज हमने भक्तों को देखा, भगवान कैसे उनके पराधीन हैं इसके पहले मैंने नहीं देखा। इसलिए जो लोग अम्बरीश महाराज की तरफ से मन से भगवान का स्मरण करते हैं, शरीर से दंडवत प्रणाम करते हैं, पैर से उनके लीलास्थलियों में परिक्रमा करते हैं, अभी हम लोग कार्तिक महीने में ब्रजमंडल की परिक्रमा करेंगे, 84 कोस की कृष्ण की लीलाओं में जाएंगे, आप लोग सब लोगों को निमंत्रण है, आप लोग आइए ब्रजमंडल में परिक्रमा करेंगे, सब लीलाओं का महत्व वर्णन करेंगे और सुनाएंगे। देश विदेश से कम हजारों आदमी आएंगे, आप लोग भी जरूर आइए। तो अम्बरीश महाराज जी वैसे ही करते, सब तीर्थों में वृंदावन के नंदगांव बरसाना इत्यादि राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन सब जगह जाते, और हाथों से खुद अपने आप सेवा करते थे, नौकर रख करके ठाकुर जी की सेवा नहीं कराते थे, अपने आप हाथों से भगवान की सेवा करते थे। इस प्रकार से सारी इंद्रियों से 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। इसलिए अम्बरीश महाराज श्रेष्ठ हैं, किंतु ये अभी साधक हैं, ये साधक हैं, ऐसे हम लोगों को करना उचित है तब भक्ति होगी, किंतु इससे भी कुछ श्रेष्ठ है जो कैसे साक्षात रूप से सेवा करते हैं, अभी मैं तुरंत बतलाऊंगा। एक कीर्तन करो तो तमाम तो अभी तक जो बतलाया इसमें ध्रुव महाराज जी की भक्ति को सकाम भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं। प्रहलाद महाराज जी की भक्ति को या प्रहलाद महाराज जी को ज्ञानी भक्त कहला जाता है। ज्ञानी और ज्ञानी भक्त में बहुत अंतर है। जो लोग ब्रह्म में मिलना चाहते हैं वे ज्ञानी हैं, और भक्त है जो उनकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान की के ऐश्वर्य का जिनको ज्ञान रहता है। अम्बरीश महाराज जी शुद्ध भक्त हैं, कोई भी कामना वासना नहीं, और अपनी जो संसारिक इंद्रियां भी हैं उनको भगवान की सेवा में सब प्रकार से लगाते हैं। उनसे बढ़कर के प्रेमी भक्त हैं वो हनुमान जी हैं। उनका एक क्षण ऐसा नहीं जाता जो भगवान की सेवा में नहीं लगता। वो उन्होंने शादी अपने जीवन में नहीं की, और जब से रामचंद्र जी से भेंट हुई है, सीता जी को पता लगाने के लिए हनुमान ही गए, लंका को जलाकर खाक कर दिया, और समाचार लेकर के इनके पास में आए। कभी रामचंद्र जी के वाहन बनते थे और लक्ष्मण जी के, कभी रामचंद्र जी शयन करते थे तो चारों तरफ से पूंछ का परकोटा बना देते, और रामचंद्र जी के पद की सेवा किया करते। राम लक्ष्मण को जब सेल लगी, नाग फांस से बांधा, तो हनुमान जी ही गरुड़ को ले आए और उनसे छुड़वाया। जब उनको शक्ति लगी लक्ष्मण को, तो यही जड़ी बूटी लेने के लिए हिमालय में गए, संजीवनी बूटी लाई, सुसेन बद्ध से इनको जिलाया। फिर रामचंद्र जी लौटे तब भी इनकी सेवा की। एक समय सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, चारों भाई और सीता जी मिलकर के सोचने लगे, विचारने लगे, हनुमान 24 घंटा इनकी सेवा में रहता है, इसलिए हम लोग सारी सेवाओं को बांट ले, हनुमान को इसे अलग रखें। इसलिए उन्होंने रात की सेवा सीता जी को दे दी, छत्र धारण करने के लिए शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी दिन में उनके साथ में रहते, भरत भैया उनकी सेवा करने लगे, हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। हनुमान जी कैसे जीवित रहे? लोगों से कहा कि भाई कुछ भी सेवा तो हमको दे दो, नहीं तुमने बहुत सेवा कर ली, आप नहीं देंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि एक बात करो, हमको एक सेवा दे दो। जे क्या? जब रामचंद्र जी को कभी जम्भाई आए तो मैं चुटकी बजाया करूं। ऐसा नियम है, जय राम राम कहते हुए चुटकी बजाते हैं। तो उन लोगों ने, उनको तो आती नहीं है जम्भाई, तो ठीक है यदि कभी आ जाए तो मैं बजाऊं। अच्छा ठीक है, यही करो। तो वो द्वार पर बैठ करके बाहर में ही और चुटकी बजाने लगे, और रामचंद्र जी को जम्भाई आने लगी, और उनको कुछ भी न भोजन न कुछ भी नहीं, दिन भर रात भर जम्भाई करते रहे और ये बजाते लोगों भर भाई। और अंत में ये चारों लोग उनके पास में आए, तुमने क्या कर दिया, ये अब तो भोजन नहीं कर सकते, न हम लोग कोई सेवा कर सकते हैं। अंत में रामचंद्र जी ने कहा, अरे भाई इसको
कुछ सेवा दे दो, अंत में देने के लिए रहे। ये अपने तन से, मन से, वचन से, सब प्रकार से हनुमान जी सेवा करते हैं। इनके संबंध में बहुत सी बातें हैं, अब कल बतलाएंगे। अंत में यही है, अपने तन से, मन से, वचन से सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए करो। भोजन करो किसके लिए? मैं आज भोजन करूंगा तो ठीक रहूंगा, तो कृष्ण की सेवा करूंगा। पानी पीता हूं इसलिए ठीक रहूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा। इसे सब कुछ रसोई बनाऊंगी, कृष्ण को भोग दे, तब पीछे सब लोगों को। इस तरह से जो भी कुछ भी करते हो कृष्ण की सेवा के लिए करो, सहजी भगवान को प्राप्त हो जाए। गौर प्रमाण दे कृष्ण।